वासुदेवाय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज मंगलवार का दिन 3 जून 2014 संध्या जागृति कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। हम सब लोग कलयुग में जी रहे हैं और ये कलयुग हम लोग मृत्यु लोक में जी रहे हैं। मृत्यु लोक का मतलब क्या है? जहां मृत्यु होता है उसको मृत्यु लोक कहते हैं। हम लोग जीवन लोक में नहीं जी रहे हैं, हम लोग मृत्यु लोक में जी रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जहां मृत्यु निश्चित होती है, चाहे वो ब्रह्मा हो, इंद्र हो, चंद्र हो, या मनुष्य हो, या प्राणी हो, या कीटक हो, या मछली हो, सब लोग यहां मरते हैं। किसी किसी की मृत्यु पर लोग रोते हैं और किसी किसी का मृत्यु समझता ही नहीं किसी को। जैसे पैर के नीचे रास्ते में अगर 100 चींटी मर गई तो पेपर में खबर नहीं आती है, लेकिन कोई मनुष्य मर गया एक्सीडेंट में, या विष पी के, या मर्डर हो गया उसका, या ऐसे ही हार्ट अटैक आ गया तो उसकी खबर आती है, या किसी ट्रक के नीचे 10-15 लोग मर गए तो न्यूज़ आता है, लेकिन 10-15 लोग के साथ में 1000 चींटी मर गई तो कोई उसका खबर नहीं देता है। लेकिन चाहे वो 1000 चींटी हो, 10-15 आदमी हो, या देवता हो, सब लोगों को इस दुनिया में मरना है। तो एक बार यक्ष ने धर्मराज को प्रश्न पूछा था कि दुनिया में सबसे बड़ी आश्चर्यकारक बात क्या है, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है दुनिया में। धर्मराज बड़े बुद्धिमान थे, धर्मराज बड़े ज्ञानी थे, पांडवों से सबसे बड़े भाई थे। तो उन्होंने जवाब दिया कि इस दुनिया में सब जीव मर रहे हैं, खाली मनुष्य नहीं, सब लोग जितने भी जीव हैं, जिनका भी जन्म होता है वो सबकी मृत्यु होती है, लेकिन जो जीवित है वो ये सोचता है कि वो नहीं मरेगा। जैसे हम लोग जाते ना शमशान में, किसी को कंधे पर लेके राम नाम सत्य है, हम जाते हैं उसको जलाते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि हम नहीं मरेंगे, वापस आ जाए अपना काम शुरू कर देते। लेकिन मृत्यु जो है, हमारे बचपन में एक पिक्चर था शोले, कितना लोगों को मालूम है? कोई बात नहीं, हाथ ऊपर करो। शोले, उसमें एक डायलॉग था, मौत तुम्हारे सर पे नाच रही है कालिया। तो ये बात कितनी सच है, केवल कालिया के ऊपर नहीं, सबके ऊपर मौत नाच करती है। और एक पिक्चर था बचपन में, तो पता नहीं आप लोगों को पता नहीं होगा, हरे कृष्णा, उसका नाम था आनंद। कितना लोगों ने देखा है आनंद पिक्चर? मैंने 10 बार देखा उसको, क्योंकि ऐसे पिक्चर भी आते नहीं है, वो इतने अच्छे पिक्चर थे, बहुत कुछ सीखने को मिलता था इंसान को। उसमें वो आनंद जो है उसको कैंसर होता है, राजेश खन्ना को, और वो जवान आदमी होता है, उसकी उसका एक माना हुआ मानी हुई बहन होती है, उसका एक हस्बैंड होता है, उसको बड़ा दुख होता है। तो राजेश खन्ना 6 महीने के बाद मरने वाला होता है आनंद। तो वो बोलता है कि हम सब कठपुतलियां हैं, मतलब क्या होता है ना, पपेट जो दोरी से ऐसा हिलता है ना, ऊपर से कोई रहता है वो दोरी से उसको हिलाते रहता है, और आपको दिखाई पड़ता है कि वो ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, उसको कहते हैं कठपुतली, उसको कहते हैं पपेट इंग्लिश में। तो कहते हम सब कठपुतलियां हैं जिसकी डोर ऊपर वाले के हाथ में है। कौन कब कैसे उठेगा कोई नहीं कह सकता। हा ऐसा एक डायलॉग था उसके अंदर। आप सोचो कितना सच है वो बात। हम सब सोचते हैं कि हम लोग अब बड़ा कंट्रोल में है, हाँ हमारा जीवन हमारे हाथ में है, हम मेहनत करते हैं, हमने अपने जीरो में से जिंदगी खड़ा किया है, लेकिन हम सब लोग ऊपर वाले की कठपुतलियाँ हैं जिसकी डोर उसके हाथ में होती है। हम सोचते हैं हम कुछ कर रहे हैं लेकिन वही सब करवा रहा है। और जो समय होता है उसके बाद में मृत्यु हमारे ऊपर क्या कहते हैं उसको चपट झपट लेती है। और वो कब किसको उठाएगी, कौन कब कैसे उठेगा कोई नहीं कह सकता। कोई बोल सकता है क्या? नहीं, मैं तो बुढ़ा होने के बाद ही मरूंगा, निश्चित है मेरा। आपका पता नहीं लेकिन मैं तो बुढ़ा होने के बाद ही मरूंगा, मेरा तो बहुत लंबा जिंदगी है। ऐसे कोई भी छाती पे हाथ रख के बोल नहीं सकता है इस दुनिया में। हाँ कोई भी नहीं बोल सकता है। आप बोलेगा अभी मैं इतना यश के शिखर पे हूँ, सब कुछ यश ही यश है, आगे का जिंदगी बहुत उज्जवल है, अभी समृद्धि समृद्धि है, और झट करके आदमी मर जाता है। आज पढ़ा ना आपने कि सुना कि नहीं, आज हमारे गोपीनाथ मुंडे जी आज चले गए, महाराष्ट्र के सबसे लोगों के प्रिय नेता थे वो, अभी अभी मंत्री बने थे, अभी अभी विजय प्राप्त हुआ था, अभी अभी देश में गवर्नमेंट आ गया, अभी महाराष्ट्र में गवर्नमेंट लाने का है, अभी बहुत सारे सपने हैं, अभी साकार करने का समय आ गया है, तो मृत्यु ने झपट लिया। बहुत लोगों को इच्छा है, हमको भी इच्छा है, आपको भी इच्छा है कि वो वापस आ जाए, लेकिन कोई उनको वापस लाने में समर्थ नहीं है। ये सबको जानना चाहिए। वो आदमी कितना भी बड़ा होगा, महात्मा गांधी भी बहुत बड़े थे, किसी ने गोली मार दी उनको। आप बोलेंगे इतना महात्मा आदमी था वो, कम से कम किसी ने गोली नहीं मारना चाहिए था उसको। इतना देश के लिए उसने कपड़ा नहीं पहना, इतना मेहनत किया, इतना त्याग किया, अपना परिवार का सुख छोड़ के दुनिया के लिए मेहनत किया, कम से कम गोली नहीं मारना चाहिए था उसको। लेकिन कोई रोक पाया क्या उसको? उसका मृत्यु का दिन था, मृत्यु आ गई उसको। इंदिरा गांधी, उसके ही सुरक्षा रक्षक लोगों ने उसको हजारों गोलियां मारी उसके अंदर, एक शरीर के अंदर पता नहीं कितनी मारी, लेकिन बहुत सारी मारी। हम लोग कहते हैं कि छलनी बनाया शरीर को, मतलब सारे होल्स बना दिए शरीर के अंदर, इतना गोली मारा। जो लोग रक्षा करने के लिए आपके बॉडीगार्ड के रूप में खड़े रहते हैं, उन्होंने ही उनके ऊपर मशीन गन चलाया, और एक मिनट के अंदर देश की पंतप्रधान जमीन में हो गई। बहुत लोग रोए, दुख किया, लेकिन कोई उसको वापस ला नहीं सका। चलो गोलियां वापस ले लो और उसको वापस लेके आओ, नॉट पॉसिबल। हर प्रकार से देखते हैं, किसी को कैंसर हो रहा है, कोई बुढ़ापे से मर रहा है, किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, किसी को किसी ने पॉइजन कर दिया, किसी ने गोली मार दिया, किसी ने एक्सीडेंट करवा दिया, किसी ने क्या किया क्या किया, कोई बोल नहीं सकता है। लेकिन तरीका कोई भी हो, लेकिन मृत्यु निश्चित है। और बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है, वो जानता है कि एक दिन मरना है। अभी आप में से कितने लोग भाड़े के घर में रहते हैं, रेंटल हाउस, बाकी सबका खुद का घर है आपका? और जिनका रेंटल घर है उसमें आप नया फर्नीचर बनाते हो क्या? नया फर्नीचर फिक्स कर दिया दीवार पे, हाँ नया सब सामान लेके आया वो फिक्स कर दिया, सिविल काम कर दिया, हाँ कोबा किया, उधर स्टाइल डाल दिया उसके ऊपर, करते हैं आप लोग? क्यों नहीं करते? आपको रहना है उसके अंदर, करना चाहिए, अच्छा दिखता है, थोड़ा पैसा भी जेब में होगा तो करना चाहिए, क्योंकि आप जानते हो आपको यहाँ से 11 महीने के बाद जाना है, इसलिए वहाँ पर आप परमानेंट इंतजाम नहीं करते हो। अगर लाते तो चेयर कुर्सी टेबल लाते हो ताकि उसको उठा के आप उन टेम्पो में डाल के नए घर में ले सकते हैं, है ना? टेम्पररी घर में कभी हम लोग सिविल काम नहीं करते, खड़िया को बुला के उधर टाइल और कड़प्पा वो सब लगाते नहीं, कभी ऐसा फर्नीचर लाते हैं जैसे जैसे टेबल कुर्सी है ना, उठा के ले गया, रख दिया, निकल गए, कोई परमानेंट काम नहीं करते उधर, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा लीव एंड लाइसेंस है, इधर डिपॉजिट और किराया है, कुछ दिन के बाद यहाँ से जाना है। उसी तरह से आपको जो ये मिला है ना, हमने आपको पूछा कौन से कितने लोग किराए के कमरे में रहते हैं, तो कुछ लोगों ने हाथ ऊपर किया, लेकिन एक्चुअली सब लोगों को हाथ ऊपर करना चाहिए। क्यों पता है क्या? क्योंकि आपका शरीर जो है ना वो किराए का मकान है, वो कुछ दिन के लिए आपको दिया है, इसमें कुछ दिन के रहना है, और एक दिन उसका नंबर आएगा तो तुरंत छोड़ना पड़ेगा आपको। जब आपका 11 महीना ख़त्म होता है तो मालिक आपको एक दिन भी उसके अंदर एक्स्ट्रा रहने को देता नहीं है, बोलता है उसका भाड़ा लगेगा आपको एक्स्ट्रा, नहीं तो छोड़ना पड़ेगा, है ना, ऐसा नियम है ना बाजार में। तो ये शरीर भी ऐसा है, अभी अपना मकान जो है ना आपका, वो मकान में कम से कम आपको पता है कि 31 जुलाई को 2014 को आपका 11 महीना पूरा होता है, आपको खाली करना है। आपको कम से कम आइडिया है कि भाई 31 जुलाई हमारा लास्ट डे है, तो आप लोग जुलाई 15 से ही प्लानिंग करोगे, चलो पैकिंग करो, सामान बैग में डालो, ये करो वो करो, ट्रक को बुकिंग करके रखो, टाइमिंग करके रखो, छुट्टी लेकर रखो काम पे, एक दिन सामान पैक करके डालना पड़ेगा, आपको पूरा आइडिया है। लेकिन ये शरीर का मकान जो है ना, इसका आपको आइडिया है क्या? किसी को आइडिया नहीं है इसका, ये सोचने वाली बात है। इसके लिए पढ़ा लिखने की होने की जरूरत नहीं है, इसके लिए MBBS MD PhD करने की जरूरत नहीं है, ये कोई भी सोच सकता है। जिसको शरीर है और जिसको जन्म हुआ है और जिसको मरना है, इसको ये सोचना ही पड़ेगा ना। बोलते ये तो पढ़े लिखे लोगों का काम है सोचने का, हम कैसे सोच सकते हैं, ऐसा बोल नहीं सकते आप, क्योंकि मरना तो आपको है, मरना मुझे है, तो सोचना मुझे ही पड़ेगा ना उसके बारे में। तो नॉलेज क्या है? ये किराए का मकान है, इस किराए के मकान से जाना निश्चित है, लेकिन कब जाना है पता नहीं है। इसलिए यहां पर कोई आदमी परमानेंट दिल लगाकर बैठता नहीं है, जो बुद्धिमान आदमी है। जो मूर्ख व्यक्ति है वो बहुत दिल लगाता है इधर, यहाँ के परिवार में, यहाँ के प्रॉपर्टी में, यहाँ के मोटरसाइकिल में, यहाँ पे गाड़ी में, यहाँ के एरिया में, यहाँ की जाति में, यहाँ के देश में, सब जगह वो दिल लगाता है। जो मर जाता है तो उसको भी दुख होता है और उसके आजू बाजू वाले लोग जो है वो भी रोते हैं, लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो जानता है कि सबको जाना है, ये सब कुछ टेम्पररी है, ये परिवार, ये पड़ोसी, ये हमारा नौकरी, ये हमारा जवानी, ये हमारा शक्ति, ये सब घाटे का सौदा है। मतलब क्या? समाप्त होने वाला है, कोई टिकने वाला नहीं। आप बोलेंगे आज मैं जवान हूँ, मेरा आज 21 साल का उम्र है, और सबको लगेगा कि मेरा उम्र है ना 21 साल ही रहना चाहिए, आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए, लेकिन हम सब लोग 21 साल के देख दिन आज नहीं है, लेकिन हर एक सूर्यास्त के साथ और हर नए सूर्य के साथ आपको घंटी बजती है, एक दिन गए आपका, है ना। बीमार हो गए कोई, घंटी बज रही है, ये ऐसा मकान है जो सबको छोड़ना पड़ेगा एक दिन, सबको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, इसका नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए और तैयारी करनी चाहिए। अगर छोड़ना ही है 31 जुलाई को तो घर में क्या बोलेंगे आप हस्बैंड को? ओ प्रभु जी 31 को छोड़ना है, नया मकान देखो, टाइम बहुत कम है, मालिक आएगा चिल्ला के गया है, बोल के गए वो 31 को खाली करना ही पड़ेगा, मेरा दूसरा आदमी आ रहा है, मैं खुद रहने को आ रहा हूँ। तो आप क्या करेंगे 31 जुलाई को? बाहर निकलेंगे क्या कमरा ढूंढने के लिए? वो सब कुत्ता बिल्ली करते हैं, कुत्ता बिल्ली खाली जब भूख लगती है ना तभी बाहर निकलते खाना ढूंढने के लिए, इंसान नहीं करता ऐसा कभी। इंसान पहले से मालूम है उसको ब्रेकफास्ट भूख लगेगी, लंच की भूख लगेगी, तो उसको पहले से ही वो बना के रखता है। कुत्ता बिल्ली जो होता है ना वो भूख लगने के बाद बाहर निकलते हैं ढूंढने के लिए, और आगे का सोचते नहीं है, इंसान सोचता है। तो वो 31 जुलाई को उसका पूरा रेडी रहेगा, ये अभी यहाँ शिफ्ट होने का है, वहाँ से टेम्पो का खर्चा इतना है, और हम लोग वो दिन छुट्टी लेकर वहाँ शिफ्ट होंगे, आधा दिन में सामान लगाएंगे, अगले दिन काम पे जाएंगे और वहीं पर रहना आरंभ करेंगे। वैसे ही मनुष्य को इस जन्म के नॉलेज के हिसाब से कि यहाँ से जाना है, अगला इंतजाम करना होगा आपको। जब आत्मा इस शरीर को छोड़ कर जाएगी तो कहाँ जाएगी? आप अगर व्यवस्था नहीं करेंगे तो एक और व्यवस्था आप पर काम करेगी, अगर आप व्यवस्था नहीं करेंगे अपने आप। तो आपने इस जिंदगी में कैसे व्यवहार किया है? कुत्ता बिल्ली जैसे किया है, हाथी जैसे किया है, शेर जैसे किया है, या मच्छर जैसे किया है, किसी का खून चूसना, हाँ तो वो जन्म आपको मिलेगा। जैसा व्यवहार आपने दुष्टता किया है, क्रोध किया है, क्रूरता किया है, हाँ किसी का द्वेष किया है, हिंसा किया है, तो वो जैसे शरीर में आप चले जाएंगे। बहुत आपको मांस खाने का इच्छा है, तो आप शेर, हाँ, कोल्ला, कुत्ता ऐसे बन जाएंगे। हर एक प्राणी का एक स्वभाव होता है, और आप हर एक आदमी जानवर की नकल कर सकते हो अपने जीवन के अंदर, कुछ जैसा व्यवहार कर सकते हो। आपने जैसा व्यवहार किया है वैसा शरीर आपको प्राप्त हो जाएगा, तो सच्चाई है जीवन की। तो हम लोग क्या सोचते हैं, अरे कम से कम मनुष्य का शरीर मिलना चाहिए, जानवर का, कीटक का, मच्छर का नहीं मिलना चाहिए। लेकिन जिंदगी भर लोगों का खून चूसते रहे तो अगले जन्म में क्या बनेंगे, मच्छर बनेंगे। जिंदगी भर बहुत खा 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 करने का प्रयत्न किया आपने, बहुत खाना है, बहुत खाना है, बहुत खाना है, और दुख हो रहा है आपको कि मैं इतना ही क्यों खा सकता हूँ, मेरा पेट इतना छोटा क्यों है, मेरे को बहुत सारा खाना है लेकिन पेट भर गया है। ऐसा हो जाए कि बहुत खाने को मिलेगा और पेट भरेगा ही नहीं, ऐसा होना चाहिए, तब क्या बनोगे? कोई बोला, कोई समझ में आया उसको? क्या क्या बताओ? हाथी बनेंगे, क्योंकि हाथी के जीवन में टनों टनों खा सकते हैं आप, 1,000 किलो 2,000 किलो भी खा सकते, वो महीना भर में आप खा सकते नहीं मनुष्य बन के, लेकिन हाथी बन के एक लंच में खा सकते हैं। कोई सोचता होगा हमारे बीच में कि मैं ऐसा सो जाऊँ ना एक महीने के बाद में उठूँगा, हाँ इतना थक गया हूँ, इतना बोर होता है दिन में काम करने के लिए। ऐसा नहीं जाना चाहिए कि आज सो गया ना 1 जून को 1 जुलाई को उठने का सीधा स्ट्रेट, बीच में की तारीख आना ही नहीं चाहिए। ऐसा आपको मन में कभी आता होगा ना, और आपको बहुत सोने की इच्छा होती होगी, तो एक ऐसा प्राणी है भालू नाम का, उसको कहते हैं टेडी बेयर, वो ठंड बर्फ वाले पर्वत में रहता है, वो 6 महीने एक साथ सोता है, 6 महीने के बाद में उठता है, 6 महीने तक सोने पर भी वो जिंदा रहता है। हम लोग तो मर जाएंगे, हमारा शरीर तो ऐसा बना हुआ है कि वो भूख से कुछ दिन के बाद मर जाएगा। और एक होता है मेंढक, पता है आपको, उसको बेडुक कहते हैं, बेडुक, वो बारिश के पहले 6 महीना जमीन के अंदर रहता है, वो ना पानी पीता है, ना हवा लेता है, ना कुछ नहीं करता, फिर भी जिंदा रहता है, और बारिश आने के बाद बाहर आता है, फिर ड्राव 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 सब जगह आवाज़ करता है। उसको कहते हैं इंग्लिश में हाइबरनेशन, मतलब वो उस पीरियड के अंदर जमीन के नीचे बिना पानी बिना हवा के जिंदा रहता है, सो जाता है वो। तो याद रखना, अगर आपको बहुत सोने की इच्छा है सावधान, मेंढक का और भालू का जिंदगी आपके लिए वेट कर रहा है। और आपको बहुत सारा मांस खाने की इच्छा है, लगता है कि ये बकरे का खाऊं कि सुअर का खाऊं कि खरगोश का खाऊं कि ससे का खाऊं कि कबूतर का खाऊं कि क्या खाऊं, मैं भी मेरे को अलग अलग टेस्ट करने की इच्छा है मांस सबकी। तो अगले जन्म में आप चित्ता बन सकते हो, शेर बन सकते हो, सिंह बन सकते हो, कुल्ला बन सकते हो, बहुत सारा वैरायटी है उसके अंदर, आपको चॉइस मिलेगा क्या चाहिए आपको। फिर आपको पाप भी नहीं लगेगा, आप अगर शिकार करोगे जानवर को और मार के खाओगे आपको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि तो शरीर के लिए वो पाप नहीं है, जो इच्छा किया वो पूरा हो जाएगा। आपको लगेगा बचपन में होते ना, अरे मेरा पतंग जो है देखो कैसे आसमान में उड़ रहा है, काश मैं भी अब पंछी होता तो मैं भी आसमान में उड़ता, इस डाली से उस डाली, यहाँ से उस पर्वत पर, पर्वत से उस पर्वत पर, ऐसे आराम से घूमता मैं इधर समुद्र के ऊपर, नदी के ऊपर, जंगल में, जब चाहो जाए आकाश में उड़ता रहता मैं। तो अगले जन्म में पंछी बन जाओगे, क्योंकि आपके मन में इतनी उड़ने की तमन्ना है, तो आप पंछी बन जाओगे। लेकिन पंछी के जन्म में मन में कितना कष्ट है, छोटा पंछी को बड़ा पंछी देखता है मारने को, उस बड़े पंछी को उससे बड़ा पंछी मारने को देखता है, वो सबसे बड़े पक्षी को मनुष्य मारने को देखता है, वो बाण मारता है उसको, उसी का शिकार करता है, और दर दर भटकना पड़ता है कीड़ा खाने के लिए। ऐसा नहीं कि पंछी की मम्मी आई, बोलो बेटा लंच में आ जाओ, थाली बना के रखी आपके लिए, तो बेटा बोलता है थोड़ा उड़ के आता हूँ, थोड़ा सा बाद में आता हूँ, फिर बाद में आता है और उसकी मम्मी उसको थाली देती है और पंछी थाली में खाना खाता है, फिर मम्मी उसकी पानी पिलाती है, बोला जा बेटा और घूम के आ जा, फिर और घूम के आता है। ऐसा होता है कभी? बच्चा हो या माँ हो या पिताजी हो, पंछी में सबको अपना अपना खाना ढूंढना पड़ता है, हर बार खाना खाते हुए देखना पड़ता है, कोई बड़ा पक्षी तो नहीं आ रहा है, कोई मनुष्य तो नहीं आ रहा है, कोई पत्थर तो नहीं मार रहा है, कोई खाने को तो नहीं आ रहा है, कोई बंदर तो परेशान नहीं कर रहा है। अभी आप घर जाएंगे ना तो चिड़िया को देखो जो आपके खिड़की में आती है, और देखो ही हो कैसा उसका व्यवहार, देखो यहाँ देखते उधर देखते इधर देखते उधर देखते, फिर कुछ खाती है फिर उधर देखते फिर उधर देखते, देखा है ना आपने? मैंने इसका बहुत गहराई से अभ्यास किया है बहुत साल पहले, और हमारे हॉस्पिटल के डॉक्टर शेट्टी है ना, वो मेरे लेक्चरर थे, उनको मैंने OPD के बाद में GT हॉस्पिटल में एक बार खड़े होकर दिखाया था, डॉक्टर साहब वो चिड़िया को देखो आप, गौर से देखो और सीखो उसमें से कितना उसके जीवन में असुरक्षितता है, कितना डर है उसके जिंदगी में। वो एक दाना खा रही है, चार बार देख रही है कौवा तो नहीं आ रहा है, फिर दाना खा रही है, फिर ढूंढना भी है उसको कि और दूसरा दाना कहाँ मिलेगा। ऐसा नहीं कि उसको पता है दाना कहाँ पर, ऐसा नहीं, वो ढूंढ रही है सब जगह पर, कहाँ दाना ढूंढना भी है, पेट भरना भी है और देखना भी है कि कोई मार ना पाए मुझे, तो ज़िंदगी पर मेरा हमला नहीं करे। बच्चों को भी देखना है, जहाँ अंडे डाल के रखे हैं वो कोई कौवा आके खाएगा नहीं उसको, कितना कष्ट है। देखो आप, मेरे तुलसी के पौधे के अंदर एक कबूतर ने आके 3 अंडे डाल दिए अंडे, और कबूतर आके उसमें बैठता था रोज। एक दिन गया, उड़ के गया, वापस आया तो 2 ही अंडे थे उसके अंदर, क्योंकि कौवा आया उसने अंडा फोड़ा और खाया और चला गया। वो अंदर जीव है उसके, लेकिन उसके पहले ही कौवा आया और तोड़ दिया। तो माँ जो है वो ढूंढ रही है किधर है किधर है, उसका अंडा किधर गया, हरे कृष्णा ढूंढ रही है वो किधर है किधर है। और बचा हुआ अंडे को भी उसको गर्मी करके वो उसको पैदा करने की कोशिश कर रही है, वो अपना पेट भी भरना है उसको, जा रही है खाना ढूंढने के लिए, फिर वापस आ रही है, फिर उसको गर्म कर रही है, फिर जा रही है, फिर वापस। एक दिन आया हम लोग देखा, देखा तो एक ही अंडा बच गया उसके अंदर। और बाय द वे जब मैं और एक बार देखा 2 दिन के बाद, तो वो अंडा भी गायब था। सोच सकते हो आप, एक बालक को जन्म देने के लिए कितना कष्ट है उसको, अपने को भी संभालना है, बालक को संभाल, अगर वो जन्म देती उसको तो इतने से बालक को संभालने में भी उसको बहुत कष्ट है। देखेगा कोई कौवा आ रहा है, कोई पंछी आ रहा है, कोई और कोई आ रहा है मारने के लिए उसको। हमको क्या लगता है, अरे कितना मस्त है ना यहाँ से उड़ने का उधर जाने का, उधर से उड़ने का वहाँ जाने का, कितना आनंद है जिंदगी में। हमारी जिंदगी में ट्रेन में जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, बस पकड़ो रिक्शा पकड़ो, पेट्रोल का धुआं खाओ, ऐसा आपको लगता है, लेकिन आपको पता नहीं है कितना कष्ट है जिंदगी में। और उसके बाद मृत्यु कब होगी पता नहीं है, अंडे के अंदर होगी, अंडे के आने बाहर निकलने के बाद में होगी, कोई गारंटी नहीं है उसका। ये सब जो मैं बता रहा हूं वो आपको हकीकत बता रहा हूं, जो आपके सामने हो रही है। हम लोग उसको ध्यान देते नहीं है, इतना गौर से देखते नहीं है, लेकिन ये सब आपके आंखों के सामने हो रहा है रोज। हर एक जिंदगी ऐसी ही अनिश्चित है, घर से बाहर निकला हुआ आदमी घर लौटेगा कि नहीं कुछ गारंटी नहीं होती है। लौटेगा तो अच्छा है, बहुत बार लौट के आया, बहुत साल से लौट पे आ रहा है, लेकिन किसी दिन लौट के नहीं आ सकता है वो। जैसे वो हमारे निकले थे दिल्ली से, बीड जिले में निकले थे, उनका सत्कार होने वाला था कि भाई लोकसभा जीत के मंत्री बन गए, ग्रामीण विकास मंत्री, उनका बड़ी सभा में बड़ा हजारों लोगों के बीच में सत्कार होने वाला था। उनको कहाँ पता है कि वो अभी उनको बुलावा आएगा, कोई नोटिस नहीं है उनको, अचानक खट करके मृत्यु आ गई। कब कौन कैसे उठेगा कोई नहीं कह सकता, ये सच्चाई है। और मृत्यु कभी भी बड़े और छोटे आदमी में भेदभाव नहीं करती है। चलो ये अमीर आदमी है, बहुत बड़ा आदमी, इसको जरा सा ढंग से लेके जाएंगे, पालकी से लेके जाएंगे, ये तो फटीचर आदमी है, गरीब आदमी है, वो तो भिखारी आदमी है, उसको क्या है, मारो लाफा और निकाल दो यहाँ से दुनिया से, ऐसा नहीं होता है। मृत्यु के सामने कोई बड़ा नहीं है और कोई छोटा नहीं है, कोई पढ़ा लिखा नहीं, कोई अनपढ़ नहीं है, कोई सुंदर नहीं, कोई कुरूप नहीं है, कोई बड़ा पावरफुल आदमी है, बहुत बड़ा शक्ति है उसका दुनिया में, वो भी कोई नहीं है, वो कोई एकदम फटेचर आदमी है, उसका भी कोई नहीं है। मृत्यु के सामने सब लोग समान होते हैं, सीना तान के चलते हैं और मृत्यु के बाद में आड़ा होकर कंधे पे चलते हैं। सच्चाई है जीवन की, बड़े से बड़े आदमी की और सबसे छोटे आदमी के भी यही सच्चाई है। सबको 4 आदमी के कंधे पे जाना पड़ता है, कितना भी ऐड से रुबाब से चलेगा ना, इतना प्रॉपर्टी है मेरे पास, ये है वो है, लेकिन जब मृत्यु आती है सबको आड़ा होके कंधे पे जाना पड़ता है, चाहे मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, हाँ सिख हो, कोई भी जात का हो, अमेरिकन हो, इंडियन हो, या तो तिरड़ी पे या तो कॉफिन में, सबको जाना पड़ता है। किसको दफना देंगे, किसी को जला देंगे, किसी को पंछी को खिलाएंगे, गिदड़ को, अलग अलग जाति का रिवाज है, लेकिन मट्टी है, मट्टी में जाना है वापस, या तो राख बनना है, या तो मट्टी बनना है, या तो किसी पंछी का स्टूल बनना है। इसलिए हमारे जगन्नाथ जी आए हैं ये सब से हमको बचाने के लिए। जब उनको हम देखेंगे तो फिर हमको मरने के बाद में दोबारा नहीं आना पड़ेगा, प्रॉब्लम हमारा क्या है, मरना है सबको, लेकिन मरने के बाद दोबारा आना है मरने के लिए, वो सबसे बड़ी समस्या है। आपको मरने के बाद दोबारा नहीं आना चाहिए यहाँ पर, दोबारा मरने के लिए, दोबारा बीमार होने के लिए, दोबारा बुढ़ा होने के लिए, दोबारा कष्ट भोगने के लिए नहीं आना चाहिए। अगर वो आप सोच रहे हो तो ही आप समझ लो कि आप बुद्धिमान हो। अगर आपके मन में ये विचार नहीं है, बाकी सब विचार है, तो ये समझ लो कि आप बिल्कुल बुद्धि हमारे पास है नहीं बल्कि कुछ, क्योंकि ये बुद्धि आपको भगवान ने दी है, उसको इस्तेमाल करके हमको ये समझना चाहिए कि ये हमारा मेन समस्या है। हमारा ये समस्या नहीं है कि मेरे चार बाल सफ़ेद हो गए हैं, मैं कैसे उसको मैं काला करूं, हमको सर्दी हो गई अभी कैसे उसको मैं दवा दे के ठीक करूं, ये भी समस्या है, लेकिन ये बहुत मामूली समस्या है। मैं मृत्यु को प्राप्त होने वाला हूं, ये सबसे बड़ी समस्या है। उसको हल करने के लिए क्या होना चाहिए, इस दुनिया में जन्म नहीं होना चाहिए दोबारा, तो फिर मृत्यु नहीं होगी। जन्म क्यों, मृत्यु क्यों होती है, क्योंकि जन्म हुआ है, तो मृत्यु को डालना है तो क्या करना चाहिए, जन्म को डालना चाहिए, है ना कॉमन सेंस। अगर आपको मृत्यु को डालना है तो पहले आपको जन्म को डालना पड़ेगा, और जन्म को डालने के लिए भगवान की भक्ति करनी होगी। वो गरीब के लिए भी वही रूल है, अमीर के लिए भी वही रूल है, जो बुढ़ा है उसके लिए भी वही नियम है, और वो जवान है उसके लिए भी वही नियम है, अलग नियम नहीं है। हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है वो अलग मंत्र का जप नहीं करता है, उसको भी वही जप करना है जो आपको करना है, उसका नाम पेपर में आता है, हमारा नहीं आता है, लेकिन दोनों को ज़रूरत उसी नाम की है, वही भगवान का नाम लेके उसको जन्म को डाल सकता है वो। तो हमारे प्रभुपाद जी ने इतना मेहनत किया ये लोगों को समझाने के लिए। उनको पूछा गया कि आप लोग इंग्लैंड में क्यों आए, आप प्रभुपाद को पूछा गया इंग्लैंड में क्यों आए आप, तो उन्होंने कहा ब्रिटिश लोगों का राज था ना उस समय, तो इंग्लैंड में गए थे वो, तो यहाँ पर राज किया बहुत सारा, 1947 में हम लोग फ्री हो गए, इंडिपेंडेंट है ना हमारा राज्य, भारत राज्य स्वतंत्र हो गया। उसके बाद में 1966 में प्रभुपाद जी इंग्लैंड गए, तो इंग्लैंड की वो है ना वार्ता रिपोर्टर औरत थी, वो पूछ रही थी कि आप इंग्लैंड क्यों आए, तो आप लोग सब लोग सुनो उन्होंने क्या जवाब दिया, बहुत सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आप ब्रिटिश लोगों ने भारत पर 150 वर्ष राज्य किया है ना, हमारा कोहिनूर हीरा, शिवाजी की भवानी तलवार, जो भी यहाँ पर कीमती कीमती था सब आपने लूट के लेके गए हो, यहाँ का भारत का जो भी संपत्ति था, सबसे मशहूर चीज़ भारत के पास थी जो विश्व भर में विख्यात थी, वो आपने चुरा चुरा के लेके गए, आपने राज्य किया और चुरा चुरा के लेके इंग्लैंड में जमा कर दिया उसको। और अभी आप जाएंगे इंग्लैंड में ना, तो वहाँ पर एक बड़ा म्यूज़ियम है जो वर्ल्ड में बहुत फेमस है, लेकिन वो म्यूज़ियम में सब चोरी की वस्तु रखी हुई है। मैं गया था, मैं तो उधर देखने को नहीं गया, सब बोल रहे थे प्रभु जी आप देखो वो म्यूज़ियम, इतना बड़ा म्यूज़ियम है, मतलब वो म्यूज़ियम में सब दुनिया भर के चोरी किया हुआ वस्तु रखा हुआ है, तो क्या चोरी किया हुआ गौरव देखने को जाओगे उधर, वाह 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 क्या चोरी किया, वाह वाह भवानी तलवार, वाह वाह कोहिनूर का हीरा, हाँ चोरों की दास्तान है पूरे इधर, तो मैं नहीं गया देखने के लिए उधर। तो प्रभुपाद ने कहा कि आपने तो दुनिया भर का वस्तु हमारे देश चोरी किया, लेकिन एक चीज़ लेने को आप भूल गए, वो चीज़ मैं खुद देने को आपको आया हूँ। जो भारत का सबसे बड़ा धन था ना, वो तो आप लेने को भूल ही गए, बाकी सारा धन था आपको समझ में आया उतना आप लेके गए चोरी करके, लेकिन एक धन था वो आपके समझ में आया नहीं कि ये यहाँ का रियल धन है, वो आप भूल गए, इसलिए मैं खुद हैंड डिलीवरी देने को आया हूँ। वो क्या है, भगवान का नाम और भक्ति, वो आपने नहीं लिया, जो यहाँ का रियल धन है, जो लूटने जैसा है, जो लूटने से कम नहीं होता है, जो लूटने से बढ़ता है, ये धन जा धन जो था, जैसे कि आपने यहाँ से कोई हीरा लिया तो यहाँ का हीरा खत्म हो गया, आपके पास जमा हो गया ना वो, तो यहाँ लेने से वो यहाँ और एक पैदा नहीं हुआ, वो एक ही था, वो यहाँ से गया आपके पास भी चला गया, वो तो यहाँ पर जीरो हो गया, वहाँ पर कोई हीरा पहुँच गया। लेकिन हमारे पास वो धन था जो आप लूटेंगे लेके जाएंगे फिर भी यहाँ पर और बनेगा, और हमारे पास भी आपके पास भी और बनेगा, वो भक्ति का धन जो है वो आप लोग लेने को भूल गए, इसलिए मैं खुद हैंड डिलीवरी देने को आया हूँ। बोला मैं आपके देश में कुछ लेने को नहीं आया हूँ, हमारे देश के लोग उल्लू लोग हैं जो अपना देश छोड़ के आपके देश में नौकरी करने को आते हैं, क्या सोच के उनका पाउंड मिलेगा डॉलर मिलेगा, वहाँ का सुख सोई है ना, वो जो सुख वहाँ पर ऐश्वर्य है, वो सबको भोगने को मिलेगा, अच्छा खाने को मिलेगा, वहाँ का ठंडी हवा मिलेगी, उन बड़े लोगों को साहब लोग के बीच में रहने को मिलेगा। वो कुछ भिक्षुक के रूप में आते हैं, भिखारी के रूप में वहाँ का कुछ वहाँ का प्राप्त करने के लिए आते हैं। मैं आपको देने के लिए आया हूँ, हमारे भारत का रीति रिवाज सिखाने के लिए आया हूँ, हमारा रिवाज आपको सिखाने के लिए आया हूँ, हमारा भक्ति आपको देने के लिए आया हूँ, जो आपके पास नहीं है वो देने के लिए आया हूँ, जो आप भूल चुके थे वो वापस देने के लिए आया हूँ। अमेरिका में भी उन्होंने लोगों ने उनको ये प्रश्न पूछा था, तो बोला मैं यहाँ पर तुम्हारे देश में नौकरी करके कुछ कमाने के लिए नहीं आया हूँ, आपको हमारे देश का भेंट देने को आया हूँ। और सब लोगों का उन्होंने जीवन परिवर्तन कर दिया। तो ये जगन्नाथ जी पता है कैसे आए अमेरिका के अंदर? प्रभुपाद जी यहाँ से जब निकले ना, तो एक बार जगन्नाथपुरी गए और जगन्नाथ भगवान को प्रार्थना किया जगन्नाथपुरी में कि भगवान जगन्नाथ कृपा करो, मैं जा रहा हूँ विदेश में, अभी आपका संदेश लेके जा रहा हूँ, आपका नाम, आपका संदेश, आपकी भक्ति वहाँ पर बांटना चाहता हूँ, ऐसा प्रार्थना करके चले गए। फिर अमेरिका ना बहुत भारत से 3 गुना बड़ा देश है, वो तो टाइम भी बदली होता है, आप इस देश में रहो टाइम बदली है, बाद में 1 घंटा टाइम डिफरेंस है, ऐसा 3 टाइम जोन है उसके अंदर, इतना बड़ा देश। हमारे देश में कैसा एक ही टाइम है, हमारा लंबा देश है, उनका ऐसा आड़ा देश है, एक देश में 3 टाइम है। अगर आप इस जगह रहोगे तो 1 घंटा पीछे रहोगे आप, वहाँ जाओगे 1 घंटा आगे, वहाँ जाओगे 2 घंटा आगे जाएंगे आप, समय बदलता है, इतना बड़ा देश है। तो प्रभुपाद जी एकदम पश्चिम भाग में गए थे जहाँ पर समुद्र किनारा है अमेरिका में, उसका नाम है सैन फ्रांसिस्को, उधर वो रह रहे थे। तो उनके जो भक्त है ना, माताजी पिताजी प्रभु जी ऐसे थे, तो वो एक बार शॉपिंग सेंटर में गए, तो शॉपिंग सेंटर में क्या हुआ, एक माताजी ने एक छोटी सी ऐसी एक बावली लेके आई वो खरीद के, और ऐसे ला के रखा प्रभुपाद जी के सामने। तो अचानक प्रभुपाद ने क्या किया, वो बावली को देख के जगह से उठे, ऐसे यहाँ से उठे, नीचे जमीन पर गए और दंडवत प्रणाम किया, पूरा जमीन पर ऐसे पूरा दंडवत प्रणाम, हाथ छोड़ के हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम किया। तो भक्तों का आश्चर्य हुआ, अरे अरे ये बावली को देखे क्या प्रणाम कर रहे हैं, सब लोग देखते रहे क्यों प्रणाम किया क्यों प्रणाम किया। तो प्रणाम खत्म हुआ, प्रभुपाद जी दोबारा उठे, तो उन्होंने प्रभुपाद जी को पूछा कि महाराज जी आपने प्रणाम क्यों किया, वो बावली में क्या है इतना? बोले बावली नहीं है, ये जगन्नाथ भगवान है, और मेरा आपको प्रश्न भी है और एक है मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने एक लाया और 2 थे क्या उसके पास दुकान में? तो बोला वो कि उसके पास 3 बड़े बड़े गोणी भर के 3 लाए थे उसने, तो हमने एक खोला तो इसमें ऐसे बहुत सारे थे, तो मैंने एक उठा के मैं लेके आई। तो प्रभुपाद जी बोले जाओ उस दुकान में वापस जाओ, उस शॉपिंग मॉल में वापस जाओ, और वो 2 और बक्से के अंदर क्या था वो खोल के देखो उसके अंदर क्या है, और 2 आपको अलग मिलेंगे वो लेके आओ। तो वापस उनको बहुत अच्छा लगा, रहे पर प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, क्या ये चीज़, उनको क्या पता जगन्नाथ क्या होता है, वो तो बोले खिलौना देख के लेके आए। वो वापस जब गई माता जी, उनका नाम था मालती माता जी उनका नाम था, तो मालती माता जी वापस दुकान में गई और पूछा कि और कुछ 2 आपके पास बॉक्स है क्या, जिसमें से एक से मैंने ये निकाला था। बोला है ना 2 बॉक्स है ना, और 2 बॉक्स खोल के दिखाया, तो एक में एक छोटी मूर्ति निकली, एक में एक सफ़ेद मूर्ति निकली, और पहले वाली काले रंग की थी, दूसरी वाली पीले रंग की थी, और तीसरी वाली सफ़ेद रंग की थी। तो वो 2 बची हुई मूर्ति लेके आए, काले वाली पहले से पहले घर पे थी टेबल पे, और एक पीली वाली छोटी सी और एक छोटी बड़ी वाली सफ़ेद रंग की वो लेके आए। तो प्रभुपाद जी ने दोबारा दंडवत प्रणाम किया और कहा कि ये जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा जी हैं, ये खिलौना नहीं है, और उस दुकान में जाके पैसे भी देके आना इसके, आपने ऐसे ही खिलौना बोल के ऐसे ही जो उठा के लेके आए थे उसको, ये भगवान है शायद। इस तरह से अपने आप जगन्नाथ भगवान प्रकट हो गए सैन फ्रांसिस्को के अंदर। सैन फ्रांसिस्को ये अमेरिका में है, कैलिफोर्निया में। और फिर मालती माता जी के जो हस्बैंड थे श्याम सुंदर प्रभु, उनको कुछ कुछ लकड़ी की मूर्ति बनाने का ज्ञान था, तो उन्होंने श्याम सुंदर जी को बुलाया और बोला श्याम सुंदर जी ये मूर्तियों को देखो, ऐसा बड़ा मूर्ति आप बना सकते हो क्या? तो बोले कि बहुत साल मैंने अभी ये काम छोड़ दिया है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा। तो बोले ये मूर्ति जो है ना, इसका जितना है ना हाथ कितना है पहले ये सब गिन लो बराबर से, उतना ही मात्रा में बड़ा आपको बनाना है। तो उन्होंने 3 लकड़ी बड़ा वाला लेके आए और वो मूर्ति को सामने रखा ऐसा फली पर, और यहाँ पर 3 लकड़ी रखे बड़े बड़े, और उसको देख देख के उसकी मूर्ति को बनाया। और हर बार प्रभुपाद जी बीच बीच में आते थे, तो ये ऐसा नहीं है, वैसा होना चाहिए, ऐसा करते करते बहुत दिन के बाद में 3 बड़े बड़े जगन्नाथ के और बलदेव सुभद्रा के मूर्तियाँ तैयार हो गई, जितने अपने गिरधारी मंदिर में है ना, इतने इतने बड़े थे, वैसे ऐसे इतने बड़े। तो इतनी इतनी सी खिलौने लेके आए थे वो, उसको देख देख कर उन्होंने इतना कम से कम 4 फुट का मूर्तियाँ बनाई 3। और फिर प्रभुपाद जी ने उस मूर्ति का स्वागत किया, उसको स्थापित किया मंदिर में, उसको उनको रखा। और एक दिन तय किया उन्होंने कि जगन्नाथ जी अगर आए हैं उनकी इच्छा के अनुसार, हमारा कुछ प्लान नहीं था, अपने आप आ गए, वो प्रकट हो गए सैन फ्रांसिस्को के अंदर, तो इनकी रथ यात्रा भी होनी चाहिए। तो उन्होंने उसका प्लानिंग किया और सैन फ्रांसिस्को के अंदर जो सबसे बड़ा हाईवे है महारास्ता, हाँ, वो गवर्नमेंट की परमिशन से उस दिन पूरा दिन बंद किया गया। और सबसे पहली बार सैन फ्रांसिस्को में, विश्व में पहली बार पश्चिम जगत में, अमेरिका के अंदर रथ यात्रा संपन्न हो गई। उसमें हजारों लोग आए थे, मेयर आया था, मंत्रीगण आए थे, बड़े बड़े अधिकारी आए थे, इम्पोर्टेंट लोग आए थे इसके अंदर, फिल्म स्टार लोग आए थे, और फुल डे रास्ता बन रहा हाईवे, बोलो, अमेरिका के अंदर। और आज भी 1969 के बाद हर साल आज भी वो हाईवे रथ यात्रा के दिन बंद हो जाता है परमिशन के अनुसार, और एक ऐतिहासिक घटना के रूप में उधर रथ यात्रा होती है। देखो आप कैसे भगवान की लीला है। और ये जगन्नाथ भगवान, आप सोचो उसके बारे में कि वो जो रथ यात्रा क्यों करते हैं, रथ यात्रा केवल जगन्नाथ की क्यों होती है, वो जगन्नाथ भगवान ही क्यों रथ पे घूमते हैं? क्योंकि नारद मुनि ने वरदान मांगा था कि तुम्हारे इस रूप को देखकर मुझे इतना प्रेम और भक्ति जागृत हो रही है मन में मेरे, पहले से मेरे मन में भक्ति है लेकिन आपको देखने के बाद में वो हजारों गुना बढ़ गई है, आपका बारे में प्रेम और भक्ति ना पहले से जितनी थी वो इतनी गुना बढ़ गई केवल आपको देखने मात्र से। तो मेरी आपको ये विनती है, एक मेरे आशीर्वाद चाहता हूँ आपसे, वरदान चाहता हूँ कि आप इसी रूप में पृथ्वी पर जन्म लो, अवतार लो, ताकि हम सब लोग, दुनिया के लोग, मतलब वो बोल रहे हैं ये दुनिया के जितने लोग हैं वो आपको भूल के यहाँ पर दुनिया जी जिंदगी जी रहे हैं, कष्ट भोग रहे हैं, वो जब आपको देखने को आएंगे तो केवल आपको देखने मात्र से उनके सबके हृदय में प्रेम और भक्ति का उदय होगा, केवल देखने मात्र से। उनको समझेगा नहीं कि ऐसा कैसा स्वरूप है आपका, लेकिन आपको देखने मात्र से उनके हृदय में बड़ा कंप हो जाएगा, प्रेम और भक्ति का उदय हो जाएगा, दीपक जलेगा, जिंदगी में खुशी आएगी, सब दुख दूर हो जाएंगे। और जब वो मरेंगे तो आप ही उनको याद आएंगे और आपको याद करते करते वो भगवान के धाम में चले जाएंगे। ये वरदान मुझे चाहिए। देखो कितने दयालु नारद मुनि, सब लोग नारद का नाम लेकर हंसते हैं, क्या बोलते हैं, कड़ीसा नारद, सब जगह जाके काड़ी लगाता है, ऐसा हम लोग उसको देख के हंसते हैं, लेकिन हमने उनको पहचान नहीं आज तक क्या चीज़ है वो। नारद मुनि ब्रह्मा के पुत्र है, ब्रह्मा के फर्स्ट पुत्र है वो, ब्रह्मा भगवान के फर्स्ट पुत्र है और ब्रह्मा का फर्स्ट पुत्र नारद मुनि है, और सबसे बड़े, दुनिया के सबसे बड़े संत है वो, और सब जगह जाकर भक्ति का प्रचार करते हैं, खुद के लिए कुछ नहीं करते, खुद ब्रह्मचारी हैं और खुद उसका आनंद ले रहे हैं, उनको जगन्नाथ को देख के आनंद से भर भर रहे हैं पूरा, लेकिन क्या याद करते हैं, अरे ये सब लोग यहाँ पर दुनिया में कष्ट भोग रहे हैं उनके लिए मिलना चाहिए, यही मैं जो पकौड़ा मैं खा रहा हूँ, मैं जो मेवा खा रहा हूँ उनको भी मिलना चाहिए। तो भगवान से तुरंत वरदान मांग लिया और भगवान ने भी हाँ कर दिया, और फिर भगवान इस रूप में आपके सामने प्रकट हो गए ताकि आप लोग उनको देखें, और देखने से आपका हृदय शुद्ध हो जाएगा और भक्ति का उदय होगा। कुछ लोग बोलेंगे हमारे हृदय में कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्या करेंगे, अगर गीला लकड़ी होगा तो आग नहीं जलेगी उसके अंदर, सूखा लकड़ी होगा तो फटाफट जलेगा, लकड़ी का राख हो जाएगा। तो अगर लकड़ी गीला है तो अग्नि क्या कर सकती है, लकड़ी को भी सूखा होना चाहिए, मतलब पाप से मुक्त होना चाहिए। अगर आप सब लोग पाप से मुक्त हो, उनको देख के ही आपको बड़ा आश्चर्य होगा, आपके हृदय में कंप होगा और आपको भगवान की भक्ति के अंदर बड़ी रुचि का निर्माण होगा। और लेक्चर में बार बार सोएगा तो कैसा मालूम पड़ेगा क्या है, ये बात समझने जैसी है। ये इनका दर्शन आप करोगे और आपका जीवन शुद्ध है, आपके जीवन में कोई पाप नहीं है, कोई मांसाहार नहीं करते आप, कोई व्यभिचार नहीं करते, कोई शराब नहीं खेलते, कोई तम्बाकू नहीं खाते हैं, हाँ कोई टीवी नहीं देखते हैं, कोई गलत काम नहीं करते, कोई चोरी नहीं करते, कोई झूठ नहीं बोलते हैं, आपका जीवन शुद्ध है, सबके परोपकार कल्याण हेल्प में आप लगे हुए हो, स्वार्थी और द्वेष करने वाले नहीं हो, ऐसा आपका जीवन अगर शुद्ध है, भगवान का नाम लेते हो, तो आपको उनको देखते आपके हृदय में ऐसा भाव आएगा, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। और वही आप पापी आदमी सामने आएगा तो भी उसको भी लाभ होगा, लेकिन उतना नहीं होगा जितना आप लोगों को होगा। इसलिए प्रभुपाद जी की ये कृपा है कि भारत का धन जो है ये वो अमेरिका लेके गए, और आज जग में 650 सेंटर है हरे कृष्ण के, ये सब जगह जगन्नाथ की रथ यात्रा होती है विदेश में। और दुर्भाग्य यह है कि भारत के सब लोगों को ये इनके बारे में जानकारी नहीं है, ये हमारा दुर्भाग्य है। और भक्ति विधान में काम करने वाले सब लोगों का ये सौभाग्य है कि भक्ति विधान में सब जगह यही बसे हुए हैं, मीरा रोड के अंदर बसे हुए हैं, सबके घर में जाओ, हमारे घर में आओ, हॉस्पिटल के मंदिर में आओ, हॉस्पिटल के चलते फिरते मंदिर में देखो, मीरा रोड के बड़े मंदिर में जाओ, किधर भी जाओ सब जगह जगन्नाथ जगन्नाथ और जगन्नाथ है ना। तो ये हमारा भाग्य है कि हमको इनका दर्शन हो रहा है। और ये दो चीज़ें हैं, इनका प्रसाद जो खाएगा और इनको जो देखेगा वो दुनिया में मरने के बाद वापस लौट के नहीं आएगा, ये इनका वरदान है। किसकी वजह से? नारद मुनि की वजह से। और नारद मुनि का वरदान जो है वो प्रभुपाद जी ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है इस्कॉन के माध्यम से, हरे कृष्णा के माध्यम से, वो वरदान जो था वो आप तक पहुँचाया है ना। उन्होंने वहाँ पर ऐलान कर दिया तथास्तु, तो डिलीवरी कौन दिया? प्रभुपाद जी ने। वो कृपा जो था वरदान वो आपके पास पहुंचाया। इसलिए हम लोग सुबह दर रोज प्रभुपाद जी को फूल अर्पण करते हैं, ये नहीं कि वो हरे कृष्णा के हमारे गुरु है इसलिए हम करते हैं, नहीं, वो व्यक्ति ने दुनिया भर में लोगों को भगवान का भक्ति का परिचय करा दिया है। ना क्रिश्चियन देखा, ना मुसलमान देखा, ना हिंदू देखा, ना सिख देखा, ना बुद्धिस्ट देखा, ना चाइनीज देखा, सबके लिए समानता से भगवान का जो कृपा है वो बांट दिया। कितने कितने लोग नशे करने वाले थे, नशा से मुक्त कर दिया। कितना कितना लोग हजार हजार औरतों के साथ सोते थे, व्यभिचार करते थे, कोई नियम ही नहीं, कोई जानकारी नहीं, कोई ज्ञान ही नहीं, कोई कल्चर नहीं, हाँ रोज नई औरत, कोई शादी नहीं करते, खाली बस यही करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, मांस खाते हैं, नशा करते हैं, जुआ खेलते हैं, हिप्पी बनकर नंगा लेके जंगल में घूमते हैं। ऐसे लोगों को उन्होंने भगवान का भक्त बनाया, हिप्पी से हैप्पी बना दिया। तो एक रिपोर्टर ने उनको पूछा कि अरे ये हिप्पी के बारे में आपका क्या विचार है? तो उन्होंने कहा कि आप तो हिप्पी लोगों के देश से हो, आपको जानकारी होना चाहिए मेरे से अधिक, और आप जानते हो मेरे से अधिक उसके बारे में। मेरा उद्देश्य खाली हिप्पी लोगों को हैप्पी बनाना है, क्योंकि हिप्पी लोग हैप्पी नहीं होते, इसलिए वो घर छोड़ के जंगल में नंगा घूमते रहते हैं, मैं उनको हैप्पी बनाना चाहता हूँ। तो उसमें से कई सारे हिप्पी लोग जो है वो हरे कृष्णा के भक्त बन गए, और आज वो साधु हैं, आज उनके शिष्य हैं, आज उनके लोग चरण छूते हैं, वो दीक्षा दिए वो लोगों को जो खुद पहले हिप्पी थे। एक दिन कितना परिवर्तन किया उन्होंने, देखो आप। और भेदभाव नहीं किया, इसमें से जो मेरे को पसंद है उनको लेके आऊँगा, बाकी सबको हटा दो, ऐसा नहीं किया। सब लोगों को मांसाहार व्यभिचार नशा जुआ से मुक्त कर दिया, जो बिछड़े हुए परिवार थे उनको एक कर दिया, जो बिछड़ी हुई जिंदगी थी उनको एक कर दिया, जो गए गुजरे थे मतलब गॉन केस थे उनको इंसान बनाया उन्होंने, दोबारा एक सम्मानजनक जीवन दिया उनको। कितनी कृपा है उनकी। और कौन सी अवस्था में गए? 69 ईयर्स में गए। पता नहीं हमारा हाथ पांव चलेगा कि नहीं उस समय पे। 69 जब लोग रिटायर होते थे, रिटायर होकर 10 साल हो जाते, वो चलने को नहीं होता है, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ये वो, हाथ जोड़े जोड़ में दर्द, ठंडी में अकड़न, इतना सारा कष्ट होता है। उस समय पे वो भारत छोड़ के गए उधर, और हजारों लाखों लोगों को भक्त बनाया उन्होंने, जीवन बचाया उनका। और कभी अमरीकी सुख का अनुभव नहीं किया, इंग्लैंड के सुख का नहीं अनुभव किया, केवल लोगों को देते रहे। वो बोले आप लोग जो भूल गए हो उसको मैं याद करने के लिए आया हूँ, आप लोग जो खो चुके हो उसको मैं प्राप्त कराने के लिए आया हूँ, हमारा धन आपको देने के लिए आया हूँ, मैं कुछ लेने के लिए आपके पास नहीं आया। इसलिए हम सवेरे की प्रार्थना में, दोपहर की प्रार्थना में उनको फूल चढ़ाते हैं, क्योंकि उनकी कृपा से हम लोग आज सुधर गए हैं। तो मैं ब्राह्मण हूँ, और आपको पता नहीं होगा भारत के कई सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मणों से बीच में से हमारे जाति है, गौड़ सारस्वत ब्राह्मण, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी का जन्म हमारे कास्ट में हुआ है। और ऐसे ब्राह्मण होते हुए भी हम लोग मांस खाते थे, मछली खाते थे, क्या क्या नॉनसेंस करते थे। और ब्राह्मण होके भी हमको भगवद गीता का ज्ञान नहीं था, जो हमको पाठ होना चाहिए, जो हमको पूरा जीवन में उसका अमल होना चाहिए। ऐसे हमारा जाति है, वो हमको पता ही नहीं भगवद गीता क्या है। ऐसे हमारा थर्ड क्लास जीवन था, ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी। तो हम हरे कृष्णा के मंदिर में गए जुहू में, तो क्या देखे कि फॉरेनर आदमी सर मुंडवा के, छोटी रख के, धोती कुर्ता पहन के हमको प्रवचन दे रहा है भगवद गीता के ऊपर। तो मुझको उस समय समर शर्म आ गई बहुत। अरे मेरा काम है ये ब्राह्मण होने के नाते गीता पर प्रवचन करने का, और मैं आज एक फॉरेनर से भगवद गीता सुन रहा हूँ, जो अपना फॉरेन का जिंदगी छोड़कर भारत में आकर एक ब्रह्मचारी बनकर, सर मुंडवा कर, तिलक लगा कर, भगवद गीता का अभ्यास करके, संस्कृत श्लोक बोलते हुए मुझे संस्कृत श्लोक वाला भागवत गीता सिखा रहा है, और मैं उसके प्रवचन में संडे को दोपहर 2 बजे बैठा हूँ। मुझे शर्म आ गई कि एक्चुअली ये मुझे याद दिला रहा है कि तुम्हारा काम क्या है। तब से मैंने तुरंत वो सब मांस वास, अंडा वंडा सब छोड़ दिया। उसके पहले मैं अंडा खाने के लिए मेरी मम्मी से झगड़ा करता था रोज, मुझे इतना चाहिए ही चाहिए सुबह और शाम, रोज झगड़े होते थे हमारे घर पे। तो सब मैंने छोड़ दिया और चार माला जप करना शुरू किया, और कुछ देर बाद लहसुन प्याज चाय कॉफ़ी भी छोड़ दिया, और फिर 16 माला जप करने लगा, फिर दीक्षा ले लिया, और इसलिए आपके सामने बैठ कर प्रवचन कर रहा हूँ। कितना अंतर हुआ देखो, कब से कब में कितना अंतर हो गया जीवन में। और अभी हमारे कहने से कई लोग भक्त बन गए, क्योंकि हमारा मेन पेशा यही है ब्राह्मण लोगों का, भगवान के विषय में लोगों को जानकारी देना, जो भूल गए उनको याद दिलाना, जो भटक रहे हैं, दुख भोग रहे हैं, उनको दुख से बचाना और भगवान के चरणों में ला के रखना, ये हमारे जाति का काम है। आजकल ब्राह्मण क्या करता है, मुँह में बीड़ी और मंत्र बोल रहा है, बोला स्कोर कितना हो गया, और फिर स्वाहा करता है, फिर बोलता है स्कोर कितना हो गया, आउट हो गया क्या, फिर स्कोर कितना हो गया। ये पूजा करने वाले लोग होते हैं आजकल, सब नकली ढोंगी और चालू लोग होते हैं, धर्म को भ्रष्ट करने वाले होते हैं। तो ये सही धर्म का ज्ञान प्रभुपाद ने दिया, सही धर्म क्या है, सही ब्राह्मण क्या है, क्षत्रिय क्या है, क्या कर्तव्य है उसका, क्या करना चाहिए, वो उन्होंने सिखाया सब लोगों को, इतना मेहनत करके इतना बुढ़ापे की एज में। उन्हीं के नाम से भक्ति वेदांत खोला गया है, भक्ति वेदांत में भी कितने लोगों का बीमारी ठीक हो रहा है। हाँ, ये व्यक्ति अभी बीमार बैठे यहाँ पर है ना, लेकिन बीमार बन के आए लेकिन उनको भगवान का नाम सुनने को मिल रहा है। ये हमारे शैलर फैमिली यहाँ बैठे हुए हैं, देखो ये महिंद्रा में काम करते थे, मैं मरीज बनकर यहाँ पर आए और भक्ति वेदांत में मरीज बनकर आए, इसलिए भक्त बने अभी आज। बोलते अच्छा हुआ क्या बीमार पड़ के इधर आ गए, बीमारी के बहाने इतना नॉलेज मिला हमको, क्या क्या हम लोग सीखे, तो क्या करते थे हम लोग, कुबड़ी खाते थे, ये करते थे, वो करते थे, आज सब छूट गया, जीवन शुद्ध हो गया है। ये सब प्रभुपाद महाराज की कृपा है, उन्होंने हमारे लिए मेहनत किया, उनकी कृपा इतनी बड़ी है कि वो तो चले गए शरीर से, और जाके उनके अभी कितने साल हो गए, 23 और 14, कितना हो गया, 37 ईयर हो गए जाके। वो उन्होंने जिंदगी में कितने भक्त बनाए, उनसे 10 गुना भक्त उनके जाने के बाद में बने, जो उन्होंने बनाए उन्होंने उतने बाद में बनाए 3 गुना। अगर वो संदेश में इतनी पावर नहीं होती ना, तो उनके जाने के बाद वो सब खत्म हो जाता, लेकिन संदेश इतना पावरफुल था कि उनके जाने के बाद में 3 गुना और भक्त बनाए गए, और 3 गुना लोगों का जिंदगी संवारा गया। इंडिया में केवल 3 मंदिर थे, एक जुहू में था, एक मायापुर में था, एक वृंदावन में था, आज 25 मंदिर इंडिया में हो गए। कितने सारे फार्म हाउस है, कितने सारे गौशाला है, कितने हजारों लाखों भक्त है। जैसे कि महापुर आया है इंडिया में, अभी सब जगह हरे कृष्ण का प्रचार हो रहा है, जितना उनके होते हुए नहीं हुआ उसके ज़्यादा उनके जाने के बाद हो रहा है। इलेक्शन किसका है, जब कोई सत्य वस्तु होती है ना, सत्य वस्तु, परम सत्य, तभी वो फैलती है अग्नि की तरह, और नकली वस्तु होती ना कुछ दिन चलती है फिर खत्म हो जाती है। अगर आध्यात्मिक वस्तु है तो बढ़ती जाती है, और कोई भौतिक वस्तु है कुछ दिन के बाद समाप्त हो जाती है। ऐसे कई पंथ आते निकल जाते, लेकिन भक्ति का पंथ आता है तो वो तो महापुर के रूप में आता है, वो सब जगह फैलता है। आप लोग ने उसमें हाथ धो लिया तो आपका भी कल्याण है उसके अंदर। आप बोले हमको क्या करना है, हमको तो नौकरी करनी है, तो आप ऐसे सूखे रह जाएंगे। और जो नौकरी के बहाने, वो बीमारी के बहाने जो कृपा मिलने वाली आपको है उससे आप चूक जाएंगे और ज़िंदगी आपकी व्यर्थ हो जाएगी। ज़िंदगी को संवारने का बढ़िया मौका आपको मिल रहा है। ये याद करके करके हम लोग रोज़ सवेरे प्रभुपाद को वंदन करते हैं, उनको फूल अर्पण करते हैं। वो क्या बोलेंगे, ये हमारे गुरु नहीं है, ये तो हरे कृष्णा वालों के, हमको क्या करना है। लेकिन आपको पता नहीं है कि उन्होंने सब लोगों को कृपा दिया, अपना कोई भेदभाव नहीं किया, काला गोरा गरीब अमीर सबको कृपा दिया। ये हमारे दीपक आचरेकर देखो, वो कहीं थे माटुंगा में, वहाँ से यहाँ पर ज्वाइन हो गए। आज उनकी कितनी श्रद्धा है प्रभुपाद के ऊपर, कितने दिल से उनकी सब सफाई करते हैं और कितना मानते हैं, वो जानते हैं कि उनके जीवन में कितना परिवर्तन लाया उन्होंने, है कि नहीं दीपक? ऐसे नहीं, हम कितना उदाहरण दे सकते हैं आपको। हम तो पहले से आए थे हरे कृष्णा में, बाद में हरे कृष्णा में भक्ति विधान में आए, लेकिन कुछ लोग यहाँ पहले आए और यहाँ से हरे कृष्णा बने। तो जीवन का उद्धार करना है, सुख प्राप्त करना है, तो हम लोगों को देखो कि हम लोग दुखी है कि सुखी है, आप ही परख लो और फिर समझ लो कि आपको हरे कृष्णा मंत्र प्राप्त जप करने के बाद में सुख मिल रहा है, आनंद मिल रहा है, शांति मिल रही है, ज्ञान मिल रहा है कि नुकसान हो रहा है, आप ही तय कर लो, है ना। गुड़ खा के देखो मीठा है कि कड़वा है, मीठा लगा तो खरीद लो, तो मत लो, आपके ऊपर डिपेंड है। दुकान में रखा है गुड़ आपके लिए, अच्छा प्योर माल, लेकिन चखेगा ही नहीं वो, तो दूर से दिखा है, वो तो ब्राउन रंग का है, वो काला दिखता है, मेरे को अच्छा लगेगा नहीं, वो सब बोलेगे तो क्या फ़ायदा उसका, मिल तो रहा था लेकिन आपने लिया ही नहीं उसको। फिर बदली हो गई नौकरी आपकी किधर, तुम्हें शादी हो गई तो बेंगलोर चले गए, वहाँ पर हरे कृष्णा नहीं मिला आपको। तो ये सब जगन्नाथ जी को लाना, आपको प्रस्तुत करना, हरे कृष्ण मंत्र का परिचय करके देना, हाँ, जीवन में बुरी आदतों को नष्ट करके अच्छी आदतों को डालना, अच्छा कल्चर, ये सब हमको प्रभुपाद जी ने दिया है। वो जो शुरुआत में मैंने कहा था कि जो अटल मृत्यु है वो सबको मिलने वाला है, उसको भी खत्म करने का फॉर्मूला आपको दिया हुआ है। जो निश्चित मृत्यु है आपको सबको आने वाली है, वो उसके प्राप्त करने के बाद दोबारा नहीं आने का जो फॉर्मूला है, वैकुंठ में जाने का जो फॉर्मूला है, वो भी प्रभुपाद ने दिया हुआ है। बोले क्या सब बकवास की बातें करते हो, कौन देखा है मृत्यु के बाद में कौन कहाँ पहुँचता है? तो मैं तो बोलूँगा अगर वो आपको विश्वास ना, जाने दो उसको, लेकिन कम से कम इस ज़िंदगी को जीते हुए खुशियाँ मिल रही है तो ले लो। और बाय द वे ये सच निकला तो अपने आप को वैकुंठ में पाओगे, और नहीं निकला सच तो भी कोई बात नहीं, ज़िंदगी तो खुशी में गई ना आपकी, दोनों तरफ से फ़ायदा है आपका। विश्वास है या नहीं है, दोनों तरफ से आपको यहाँ पर रहते हुए तो खुशी मिलेगी ही मिलेगी, अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छे बर्ताव करने वाले, अच्छा व्यवहार करने वाले, और इसके जीवन के अंदर भी पाप से मुक्त होकर आप खुशियाँ पाएंगे, तो भी तो ज़रूरी है ना। मरने के बाद वैकुंठ जाना है, लेकिन मरने तो यहाँ जीना है, उसका क्या करना है? उतना समय तो आनंद चाहिए कि नहीं अपने को, अच्छे लोगों से मिलना, अच्छा खाना पीना, अच्छा रहना, सुख सुख चाहिए कि नहीं आपको? हमको सबको सुख चाहिए, कौन ऐसा है जिसको दुखी रह के जीना है? बोलो, हमको सुख पसंद ही नहीं, हमको दुखी रहना है, ऐसा कोई है क्या इसके अंदर? सब लोग सुख की खोज करके मेहनत कर रहे, दिन रात विराट चर्च के ट्रेन में भाग रहे हैं, क्यों? सुख को खोज रहे हो, क्योंकि मेहनत करूंगा तो सुख मिलेगा मुझे, वो सुख भी आपको मिलेगा। हमको पूछो, हम 30 साल से कर रहे हैं, अगर हमको सुख नहीं मिलता तो क्यों हम लोग इसको फॉलो करते हैं, छोड़ते थे उसको 5 साल के बाद, नहीं चाहिए, सब बकवास है। लेकिन अभी 20 साल की उम्र में लिया था, अभी 30 साल पूरे हो गए, 31वां साल चल रहा है, अभी भी जोरदार चल रहा है। आपको भी बता रहे हैं, आप भी लो, क्योंकि इसमें सुख है, इसलिए तो हम लोग आपको बता रहे हैं। तो क्या जरूरत है दोपहर का प्रोग्राम करने की, जाके अपना अपना काम करो, नर्सिंग करो, हाउसकीपिंग करो, बैठो, ये 2-1 घंटा निकाल के इतना जोर से बोलने की जरूरत क्या है? अगर उसमें कोई मजा नहीं है, सच्चाई नहीं है, तो मैं क्यों बोलूँगा आपको इधर आके? मेरे पास बहुत काम है, लेकिन मैं जानता हूँ अगर मैं 1 घंटा निकालूंगा और आप लोगों को समझाऊंगा तो आपके जीवन का उद्धार भी हो सकता है, जैसे हमारा हुआ है। और सबसे बड़ी बात वो परिवर्तन है, धन देने से ऊपर अधिक लाभ वो है, आपका हृदय अगर परिवर्तन हो गया ना तो वो सबसे बड़ा लाभ है, उसकी हम कीमत नहीं चुका सकते हैं। ये 10 रुपये लो और परिवर्तन लाओ हमारे हृदय में, ऐसा नहीं हो सकता ना, वो तो बुद्धि से होगा परिवर्तन, आप स्वीकार करेंगे तो होगा। तो प्रभुपाद जी वो बोले ना, मैं देने को आया हूँ, आप ले लो, आपका भी उद्धार हो जाएगा, इंग्लैंड में जाके बोला उन्होंने। और अभी हम भक्ति विधान में आप लोगों को बोल रहे हैं कि आप भी ले लो, आपका भी उद्धार हो जाएगा। हाँ, बोलो सब लोग, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही सब जीवन का सार है। थैंक यू वेरी मच। हरि बोल।